जयते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालु कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तदभक्ताय नमः यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकाचर्यायुः पुत्रेति तन्मयतया करोमि तं सर्वभूतहृदयं मुनिना तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयामि शरणं।
किसका बच्चा है? गुरु पूर्णिमा गई, गुरु पूर्णिमा सारे भारतवर्ष में मनती है। सभी लोग, हमारा सभी जितने भी संप्रदाय हैं, व्यास जी को गुरु मानते हैं और उनकी पूजा होती है। वही कल गुरु पूर्णिमा का दिन व्यास जी का जन्म दिवस है। कैसे उनका जन्म हुआ इसके संबंध में कुछ हम लोगों ने बतलाया। यथार्थ में व्यास का कोई जन्म नहीं है, वो भगवान के समान ही भगवत अवतार हैं, इसलिए उनका भी जन्म नहीं। वो तो श्रीमद् भागवत को प्रकाश करना था, इसलिए उनका आविर्भाव इस रूप में हुआ। पहले से ही भगवान की इच्छा के अनुसार में ये सब कार्य नियमित रूप में पहले ये सब स्थिर था। ये कृष्ण के आप तिरोभाव के बाद में, लीला के बाद में कैसे श्रीमद् भागवत का प्रकाश हुआ, इसलिए ये सब चीजें हुई। इसलिए व्यास जी ने अंत में श्रीमद् भागवत का प्रकाश किया। भागवत रहने पर भी, नित्य रहने पर भी, पुस्तकाकार में हम जैसा देखते हैं उस रूप में तो नहीं थी, किंतु श्रुति के रूप में थी। इसलिए भगवान ने पहले ब्रह्मा जी को हृदय में स्फूर्ति किया, क्या चतुर्श्लोकी श्रीमद् भागवतम, और उसके अंदर में श्रीमद् भागवत का सारा रहस्य उसमें भरा हुआ है। उसी को पीछे से नारद जी की कृपा से सुखदेव गोस्वामी जी ने, व्यास जी ने अनुभव किया और ग्रंथ के रूप में लिखा जीवों के कल्याण। इसके संबंध में थोड़ा कुछ हमने बतलाया। इसलिए सभी संप्रदाय के लोग व्यास जी को गुरु मान करके, देखो तुम हम ऐसा करेगा ना तो हमारा ये कान फट जाएगा, दिमाग भी हमारा गड़बड़ हो जाता। पहले से जो कुछ करना है ठीक करके रखो, अन्यथा ये सब रखने दो। कहीं बड़ी बड़ी सभाओं में तो ये सब कुछ नहीं होता, हमने देखा है कहीं नहीं होता। बड़े बड़े मंत्री लोग आते हैं, हजारों आदमी, 10,000 आदमी बैठते हैं, ये सब चीजें तो नहीं आती। क्या प्रसंग है? इसलिए कहीं कहीं पर यह लिखा गया, अष्टादश पुराण लिखे जाने पर श्रीमद् भागवत ये लिखा गया। अष्टादश पुराण का भी नाम आया। 17 पुराणों के बाद में इसका प्रकाश हुआ ऐसा हमने शायद कहीं नहीं देखा। 18 पुराण ही, किंतु जो श्रीमद् भागवत था वो संक्षेप में था। व्यास जी ने समाधि में देख करके और तब फिर उसको किया। व्यास जी ने जो लिखा तो व्यास जी कैसे ये लिख सकते हैं, सूत उवाच या सूक उवाच ये कैसे लिखेंगे, आ रहा है समझ में? व्यास जी के बहुत बाद में हुए हैं सूत गोस्वामी, बहुत बाद में। सुखदेव गोस्वामी को उन्होंने पढ़ाया, उन्होंने परीक्षित महाराज जी की राज्यसभा में उन्होंने कहा, किंतु उसके पहले ही ये सब सूत उवाच ये सब कैसे हुआ? पहला सुखदेव को परीक्षित हमारे व्यास जी ने नारद जी के कृपा से वो देखा, देख करके उसको लिखा। व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को पढ़ाया, पढ़ाने के बाद में परीक्षित जी का और सुखदेव का संवाद हुआ। इसके बाद में 300 वर्षों के बाद में वो दूसरा अधिवेशन नैमिषारण्य में गोस्वामी सनक आदि ऋषियों को बतला रहे हैं। उस सब का फिर व्यास जी ने फिर संकलन कर लिया। जहां जहां जो होता था व्यास जी वहां पर जाते थे और उसको उसमें लिपिबद्ध करते जाते थे। अंत में तीसरे अधिवेशन के बाद में लुम्हर्षण, वो उसका पहले, ये लुम्हर्षण सूत नहीं, उग्र सभा सूत परिषद के सभा में थे और इसके बाद में थे नैमिषारण्य में, उन्होंने ऋषियों को ये सब बातें बतलाई। तो वो सारा संवाद जो है हमारे व्यास जी ने फिर से संकलन कर उसमें ऐड करते गए। हाँ, सब कुछ। हाँ, उग्र सभा। परीक्षित महाराज जी ने फिर नहीं, वो उन्होंने परीक्षित महाराज जी के लड़के जन्मेजय जी को फिर जैमिनी ऋषि इत्यादि ने सुनाया। ये सब का एक साथ में व्यास जी ने संकलन करके पूरा भागवत को किया। तब इसमें 318,000 श्लोक है और ऐसा नहीं मानने से सब गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए पूरी श्रीमद् भागवत जो आजकल उपलब्ध है ये सुख उन्हीं के द्वारा है, वेद व्यास के द्वारा। इसमें एक लाइन भी धर का नहीं है। जैसे गीता में धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जो जो उत्सव, ये श्लोक किसने लिखा है? ये तो कृष्ण की कही हुई गीता है कि नहीं है? कृष्ण ने ये कहा कि नहीं? तो ये जो कृष्ण से ये है, ये कृष्ण ने गीता को अर्जुन को सुनाया तो झूठी हो जाएगी बात। इस चीज को ऐसे समझिए, जो गीता है इसमें प्रारंभिक 16 या 17 जो ये श्लोक हैं, जैसे धृतराष्ट्र उवाच ये पहला श्लोक है, धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जो जुत्सव, ये सब जो जुटे हुए हैं हमारे पुत्र और पांडवों के युद्ध के लिए निश्चित करके, तो उन लोगों ने क्या किया ये कृष्ण ने नहीं कहा है। इसके बाद में संजय उवाच चला, क्या क्या हुआ वहां से कहां तक,
दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी होकर के अर्जुन ने कहा कि रथ हमारा भीतर ले चलो, और अर्जुन एकदम विषाद ग्रस्त हो गए, धनुष बाण छोड़ दिया। और उस समय में जो कृष्ण ने कहना आरंभ किया है, अर्जुन ने सुनना प्रश्न का, यहाँ से गीता आरंभ होती है, किंतु उसका पहला जो प्रारंभिक जो चीजें हैं वो गीता का नहीं है, प्रस्तावना है। किंतु प्रस्तावना होने पर भी ये ऐसा है जैसे लवण समुद्र में, कितना बड़ा था अनंत लवण समुद्र है, नमक का समुद्र भी, खारा समुद्र, उसमें कोई चीज डाल दो ना? कोई भी चीज डाल दो तो क्या होगा? रसगुल्ला भी उसमें डाल दो तो क्या होगा? वो नमक हो जाए। कुछ दिनों के बाद में, एक वर्ष, दो वर्ष, चार वर्ष, दस वर्ष के बाद में वो सब कुछ वो नमक, पत्थर भी नमक हो जाएगा। तो ये धृतराष्ट्र और ये व्यास जी ने जो लिखा संवाद, यहाँ तक कृष्ण के उपदेश शुरू होने के पहले तक, वो सब सारा भाग भी कृष्ण के संवाद में मिलकर वो भी गीता ही बन गया, गीता ही बन गया। उसको गीता ही कहते हैं, उसको गीता से अलग मत निकालो, गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए धर्म क्षेत्र से भी आरंभ करके सब कितना है ये गीता ही समझो। ऐसे ही श्रीमद् भागवत कहां से आरंभ होती है, जहां परीक्षित जी को सांप काटता है, सांप काटने के लिए अभी संपात होता है, और संपात होने के बाद में तो जब वो सुखदेव गोस्वामी जी आते हैं, अनशन पर वो बैठते हैं और सुखदेव गोस्वामी आते हैं, और तब ये सुनाते हैं जो सुखदेव गोस्वामी जी, ये असल में यहाँ से लेकर के वो भागवत। किंतु ये जो पहले की जो प्रस्तावना है, उस श्रीमद् भागवत रूपी अथाह समुद्र में मिलकर, अमृत समुद्र में मिलकर के ये जो चीजें जो थी, ये भी जैसे किसी नदी का जल जब गंगा जी में मिल जाता है तो अलग से वो नदी नहीं रहती, पानी नहीं रहता, वो सब वो गंगा हो जाता है, ठीक ऐसे। इसे सारे उपदेशों को सब भागवत को ही समझो, किंतु गुरु तो व्यास की पूजा तो सभी करते हैं, गुरु जी के मुख से हमने सुना था, शंकर जी भी, शंकराचार्य जी भी व्यास की पूजा करते हैं, मध्वाचार्य जी भी व्यास की पूजा करते हैं, व्यास की पूजा करते हैं, रामानुजाचार्य भी व्यास की पूजा करते हैं, और भी चार्वाक भी, और जितने भी दूसरे संप्रदाय भी हैं सभी लोग, शायद अच्छा सभी लोग, क्योंकि चार्वाक का भी जो मूल मंत्र है और सिद्धांत है वो वेद से ही, वेद और पुराणों से ही लिए गए हैं, हो सकता है कि न हो, किंतु और जितने हैं आस्तिक, जितने दर्शन हैं सभी लोग इनकी पूजा करते हैं व्यास जी की। किंतु पूजा कौन सी ठीक है, इस पर थोड़ा सा विचार करना है। जो व्यास के हृदय को जानकर उनको प्रसन्न किस रूप में कर सकता है, उनके हृदय के भावों को समझ करके, और ठीक अनुरूप में उनकी सेवा जो मनोभीष्ट सेवा करता है वो उनकी यथार्थ पूजा है। गुरु की सेवा है, पंखा चलना भी गुरु की सेवा है, रसोई बनाना भी गुरु की सेवा है, उन्होंने जिस काम में लगा दिया उस काम में लग गए, किंतु इन समस्त सेवाओं में कुछ तारतम्य है। चैतन्य महाप्रभु के समय में बहुत से लोग थे, सब प्रकार से महाप्रभु की सेवा करते हैं, किंतु किसी के लिए ये नहीं लिखा गया श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति शपथ। क्यों उनके लिए लिखा गया? स्वरूप दामोदर जी भी तो हैं, राय रामानंद जी भी हैं, और भी कितने सभी लोग हैं, रूप गोस्वामी से सभी लोग बड़े हैं, महाप्रभु के निकट भी रहने वाले हैं, जैसे सिखी मैती और माधवी देवी, ये सब उनके निकट में रहने वाली है महाप्रभु के, काशीश्वर मिश्र और बक्रेश्वर पंडित पुंडरीक विद्यानिधि, ये सब अष्ट सखियों में से हैं। किंतु इन्हीं का नाम लिखा गया क्यों? इसलिए कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जितने भी भीतर की बातें थी उसको उन्होंने संसार में व्यक्त किया। और भक्ति क्या है जिसके लिए वो आए, प्रेम क्या है इत्यादि का सबका डिफिनेशन दिया, ऐसा उन लोगों ने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि जानते नहीं थे, इसलिए ऐसा कभी अपराध न बन जाए। इन्हीं से प्रकाश कराना था, विशेषकर के रूप मंजरी के भावों को जीवों के लिए देने आए, इसलिए विशेष करके रूप गोस्वामी ने ऐसा किया। हो सकता है स्वरूप दामोदर जी कितने बड़े हैं सब विषय में, ललिता जी क्या बता रहे हैं, किंतु उनको फुर्सत नहीं है चिंतन करने से। नीचे उतरने के लिए हमारे समझ से नीचे उनके भाव उतर नहीं रहे ये सब लिखने के लिए। सनातन गोस्वामी वैसे ही, सनातन गोस्वामी जी ऐसा मत समझना जो हरिभक्त विलास लिखा और वैदिक भक्ति के आचार्य माने जाते हैं और रूप गोस्वामी जी रसस्त का प्रकाश किया इसलिए वो बड़े हैं, ऐसा मत समझना कभी। उनके ग्रंथों को देखने से मालूम होता है, विशेष करके श्रीमद् भागवत की टीका जो बृहद भगवतामृत में दिया है, इसको देखने से ऐसा मालूम होता है कि कितना इनका उच्च विचार था रस विषय में और भक्ति का विचार। इसलिए रूप गोस्वामी को उनका शिष्य कहलाया जाता है, क्योंकि उनका बृहद भगवतामृत ग्रंथ यदि वो प्रकाश नहीं करते तो सब लोग कुछ अंधेरे में रहते, समझ नहीं पाते उनके भावों को। उन्हीं को देख करके बृहद भगवतामृत, तब फिर लघु भगवतामृत किया किसने? रूप गोस्वामी। उनके भावों को लेकर के ही रूप गोस्वामी ने अपने सब ग्रंथ किए। रूप सनातन गोस्वामी की भी उन पर कृपा थी, इसलिए सनातन गोस्वामी जी के विरह तिथि इसी गुरु पूर्णिमा को हुई, इसलिए उनका महत्व समझना चाहिए। बंगाल में ब्राह्मण कुल में उनका जन्म हुआ, बड़े होनहार और बड़े विद्वान बचपन से थे तीनों भाई, विशेषकर रूप गोस्वामी और ये दोनों भाई। किस प्रकार से बादशाह के वजीर बने, मुख्यमंत्री और प्राइवेट सेक्रेटरी बने, साकर मल्लिक और दबीर खास। साकर मल्लिक माने सनातन गोस्वामी और दबीर खास मुसलमानों ने इनके नाम रख दिए, मुसलमानी नाम। और जब तक रहे बड़ी अच्छी तरह से उनका राज्य संचालन किया, किंतु चैतन्य महाप्रभु के आने के बाद उनका एकदम सब कुछ बदल गया। किंतु पहला उनका जीवन कैसे था? पहले भी नवद्वीप से बड़े बड़े पंडितों को बुलाकर भागवत का रसास्वादन करते, वैष्णव बड़े बड़े पंडितों को जो उस समय में थे, और वहीं पर रामकेली ग्राम में कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए, वहीं पर दो सरोवर किया जो अभी तक सरोवर भी हैं, राधा कुंड श्याम कुंड रूप सागर या और वहां पर मैं वृंदावन में हूँ, राधा कुंड के तट पर हूँ, इस प्रकार से भजन करते थे। इसलिए हठात महाप्रभु जी से भेंट हो गया और आकर्षित हो गया ऐसा नहीं, उस समय भी करते थे, किंतु महाप्रभु के आने से उनका जीवन ही बदल गया और दोनों ने निश्चित कर लिया कि अब हमें राजकाज से कोई भी मतलब नहीं है, संसारिक किसी भी कृत्य से हमारा कोई भी मतलब सरोकार नहीं है। चैतन्य महापुरुष से भेंट होने पर देखो जल्दी, अरे हमारे कोनो लोग नहीं जबर, क्यों निश्चित ही नहीं? महाप्रभु के मिलने के बाद में सारी संपत्ति का विभाग कर दिया, ब्राह्मणों को आधा दे दिया जो कुछ कमाया था, और आधा में आधा गृहस्थ के संचालन के लिए जीव गोस्वामी को पढ़ाने लिखाने के लिए दे दिया, और जो थोड़ा सा बच गया वो जीव उनके उनको किसी प्रकार से जल से मुक्त करके वृंदावन में भेजने के लिए, और ऐसा करके ये पहले तो रूप सनातन रूप गोस्वामी और अनुपम जी चले गए, और इसके बाद में सनातन जी को एक पत्र लिखा रूप गोस्वामी ने, केवल अक्षर दिया, याद है ये दिया, और एक सुनते हैं कोई चार पांच अक्षर लिख करके दे दिया, हाँ एक एक अक्षर केवल लिख दिया, ये केवल अक्षर लिख दिए और पांची पहुंच गई सनातन गोस्वामी के पास में, जेल में पहुंची, कैसे जेल में गई होगी ये समझिए, ऐसे पहुंच गई और उन्होंने पढ़ लिया, कैसे? जैसे पाती आई राधा जी के यहाँ से कृष्ण के पास में, कैसी पाती आई? राधा जी शाम को कृष्ण के पास में पत्र लिख रही, और लिखते लिखते कृष्ण की याद होते 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 तन्मय हो गई और कृष्ण बन गई, और कृष्ण बन करके संबोधित कर रही है, रा लिखने जा रही है, रा का अभी ऐसा एक वो क्या बिंदु बिंदु डॉट लाइन देने के लिए ऐसा जो लिख रही है, बस कलम वहीं पर रह गई, सारी रात भाव में विभोर रही, आंखों के आंसुओं से वो तर हो गई, ललिता जी ने वो चिट्ठी छीन लिया और उसको मोड़कर उसको कमललाल से बांध करके पीले रंग उस पर लगा दिए और कृष्ण के पास में भेज दिए, और कृष्ण पढ़ते पढ़ते सारा दिन और रात पढ़ते रहे। ऐसे ही सनातन गोस्वामी ने पढ़ा जदुपते को गथा, जदुपति जदुपति माने के जदुपति माने ये मथुरा और द्वारका कहाँ गई, ऐसा वैभव जो संसार में नहीं, वैभव यहाँ पर की सुधर्मा सभा थी, यहाँ पारिजात के पुष्प लगे थे, और ऐसी नगरी विश्व में नहीं थी, वो आज नगरी कहाँ गई? उत्तर कोसला अयोध्या कहाँ गई? राम कहाँ गए? इस तरह से उनको याद दिलाया कि सोने का लंका कहाँ गया और तुम लोग या हम लोग इस संसार में पचड़े में पड़े, इसी से ही हम सुख पाना चाहते हैं। ये कैसा है, हड्डी में चमड़ा सूखा हुआ उसमें लगा हुआ हो, उसको पुनः पुनः चूस रहे हैं, इसके लिए ही संसार में हम आए हैं। उनसे पूछो जो मथुरा कहाँ गई, द्वारका कहाँ गई, उत्तर कोसला कहाँ गई, तो तुम्हारी और हमारी क्या है? कुछ दिनों के बाद में क्या होगा, इस विचार को देखो। इसलिए जल्दी से जल्दी ये सब चीजों को छोड़ करके भगवान का भजन करने आओ। साफ साफ उसमें लिख और पढ़े और उसी समय में जैसे तैसे पैसे दे करके कुछ ऐसे कर करके नदी में कूद करके नदी को पार कर करके दस्युओं के हाथ में पड़े, वहां पर भी सब छोड़ करके आठ मणियां उनके पास में असर थियां, उसको भी कैसे छोड़ दिया। संसार की सारी जितनी माया ममता ग्राम्य बातें सुनना काना सबको संपूर्ण रूप से छोड़ करके काशी में महाप्रभु से मिले। यहां तक कि उनके पास में एक जो कंबल भोट कंबल था, भोट कंबल माने उलेन कंबल किसी प्रकार का होगा, आप समझिए जैसे आज से 500 वर्ष पहले कैसे कंबल होते, हमने कंबल देखा है लोमों से भरा हुआ और उसी को हम बड़ा अच्छा मानते थे, इनका भेड़ के इसे बनते थे और दाम 5 रुपया, बार 5 रुपया। उस समय में 1 किलो घी का दाम 1 रुपया, 1 रुपया, ये कौन खरीदेगा घी, 4 आने 8 आने किलो घी मिले तो ले लें, और आजकल 100 रुपये में भी नहीं, कल्पना नहीं कर सकते उस युग की बात। और उनके साले ने जीजा जी ने उनको कंबल दिया और उसको ओढ़ करके शीतकाल होगा जरूर आए, महाप्रभु जी ऊपर नीचे देख रहे हैं, 1 सेकंड के अंदर समझ गए, गुरु देखता है और शिष्य के हाथ में घड़ी है, बार बार देखते हैं तो शिष्य नहीं समझता ये किस लिए। आजकल लड़कियां भी हाथ में घड़ी लेकर के चलती हैं, कौन लड़कियां जो भजन कर रही हैं, इसलिए इन सब का आदर से ठीक रखना है। यदि भजन करने की वह चीज आवश्यकता है तो सनातन गोस्वामी के आदर्शों को लेकर के हमें चलना होगा, ऐसा प्रेम यदि चाहिए, और नहीं हंसे भी गाल भी खुले और कुछ छोड़ना ना पड़े, भजन भी हो जाए, संसार भी हो जाए और भजन भी हो जाए, आसक्ति भी रहे संसारी और भजन भी हो जाए, ऐसा चाहते हैं तो जैसा चल रहे हैं चलिए, नहीं तो सनातन गोस्वामी का जीवन चरित्र ग्रहण करना होगा संपूर्ण रूप से, तब ये प्रेम होगा। महाप्रभु जी ने उनको उगए स्नान करने और अपनी कंबल को एक गुदड़ी वाले को, एक भिखारी को कहा, गुदड़ी सुखा रहा था, कह जैसे ये भोट कंबल ले लीजिए और ये गुदड़ी दे दीजिए, कह जाओ दिल्लगी करने के लिए और कोई आदमी नहीं मिला, हमसे दिल्लगी करने आया देगा तो सचमुच में दे दो, तो वो तो पहले ही से दे रखा था, वो बड़ा खुश होकर के निहारता रह गया और उसी बोले करके चले आए, वो अपने को परम सौभाग्य मानता होगा। ऐसे ही संसार छोड़ करके आकर के हम लोगों में किसी किसी को फिर उसी जगह में रुचि जाती है, पैसे फिर इकट्ठा करना और भजन नहीं करना, इसलिए वो सब चीजों से खूब, यदि प्रेम करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, भक्ति करना चाहते हो तो उनके आदर्शों को ले। संसार में कहीं भी आसक्ति नाम की और न रहे, सब कुछ एकदम गुरु पाद पद्म में या भगवत पाद पद्म में समर्पण कर दिया जाए। तुम्हारे इच्छाएं मोर, उन्होंने चैतन्य महाप्रभु की इच्छा में अपनी सारी इच्छाओं को मिला दिया और तब महाप्रभु के बंदे। महाप्रभु जी उनको आदर करते हैं। सनातन गोस्वामी जी क्या कहते हैं, आप हमें, सनातन गोस्वामी महाप्रभु जी के लिए कहते हैं, आप हमें क्या निम्बरस पिलाते हैं और जगदानंद को आप हमें गौरव बुद्धि माने हमको आप पूज्य समझ करके सम्मान देते हैं, सम्मान रूपी हलाहल पिलाते हैं हमें, और जगदानंद को शासन रूपी आप अमृत उसे पिलाते हैं। क्या समझा, जगदानंद को बहुत शासन करते हैं। अच्छा, और जगदानंद के